नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे अंतिम चरण में 142 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। ताजा समाचार मिलने तक 61% से अधिक मतदान की खबर है। कोलकाता, हावड़ा, 24 परगना जिलों में लंबी कतारें लगी हुई हैं। राज्य में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्वक चल रहा है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। हालांकि छिटपुट घटनाओं की खबरें आई हैं, जिनमें बारानगर में ईवीएम की खराबी और नदिया में भाजपा की एक मतदान प्रतिनिधि का घायल होना शामिल है। दक्षिण 24 परगना के बसंती में एक भाजपा उम्मीदवार के वाहन पर असामाजिक तत्वों ने हमला भी किया है। इस बीच भाजपा ने दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा सीट के कुछ केंद्रों पर पुनर्मतदान की मांग की है। सुरक्षा बलों ने मतदान वाले 7 जिलों में कई क्षेत्रों में मतदान केंद्रों के बाहर जमा भीड़ को तितर बितर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार गंगा हजारों वर्षों से उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा रही है, उसी प्रकार ये एक्सप्रेसवे भी राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचा देश की तीव्र प्रगति और महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। गंगा नदी की ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके आसपास से गुजरने वाले आधुनिक एक्सप्रेसवे विकास की नई धमनियां बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के विकास को गति देने और भारत के उज्ज्वल भविष्य में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के एक छोर को दूसरे छोर से तो जोड़ता ही है, ये एनसीआर के असीम संभावनाओं को भी करीब लाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां तो दौड़ेगी ही, इसके किनारे नए औद्योगिक अवसर विकसित होंगे। इसके लिए हरदोई जैसे दूसरे जिलों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किए जा रहे हैं। अलग अलग सेक्टर्स जैसे फार्मा, टेक्सटाइल आदि के क्लस्टर्स विकसित होंगे। युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार होंगे।
प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध करके महिलाओं के साथ विश्वासघात करने के लिए समाजवादी पार्टी की आलोचना भी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि के अंतर्गत राज्य में उन्नत बुनियादी ढांचा विकास को गति दे रहा है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज इक्वाडोर की विदेश मंत्री गैब्रिएला समरफोल्ड से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने व्यापार, कृषि तथा क्षमता निर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इक्वाडोर के विदेश मामलों और मानव गतिशीलता मंत्री और 3 दिवसीय यात्रा पर कल भारत पहुंची हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य भारत के साथ संबंधों को मजबूत करना है। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष आज लद्दाख पहुंच गए हैं, जहां अगले महीने की 1 तारीख से 15 तक इनका प्रदर्शन किया जाएगा। लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा बलों के साथ वायुसेना हवाई अड्डे पर अवशेषों का स्वागत किया। मिजोरम में लगातार हो रही तेज बारिश और हवाओं के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। अधिकारियों ने बताया है कि लगातार हो रही बारिश से चट्टान खिसकने और भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। राज्य में आज दूसरे दिन आइजोल, सेरछेप और दक्षिणी मिजोरम के लुंगलेई जिले में स्कूल बंद रहे। 70 से अधिक घर, स्कूल, चर्च हॉल और सरकारी इमारतें प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने कई जिलों में तेज बारिश दर्ज की है और शुक्रवार तक और अधिक वर्षा, तूफान और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने शनिवार तक ओडिशा, उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के यनम में कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरे मौसम की संभावना भी व्यक्त की है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में आज गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। कल तक देश के उत्तर पश्चिमी भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। फीफा परिषद ने अपने शासन नियमों में संशोधन को मंजूरी दे दी है। इस संशोधन के तहत अफगान महिला खिलाड़ी फीफा प्रतियोगिताओं में आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भाग ले सकेंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से मुंबई में होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।